नमस्कार, मैं हरिशंकर व्यास। अब विश्वास करें तो किस पर, तिरुपति में धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर करोड़ों नहीं अरबों हिंदुओं के साथ जो विश्वासघात हुआ, क्या उसका पश्चाताप उन्हें भी है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर इसके लिए जिम्मेदार हैं? जवाब होगा रत्ती भर नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो तिरुपति के प्रसादम में मिलावट होता ही नहीं। पशु चर्बी क्या, किसी प्रकार की मिलावट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन कोई क्या करे, इस देश में हर तरह की मिलावट का खेल तो सालों पुराना है, और हाल के 10 सालों में तो मिलावट ही मिलावट। आज अगर आप कुछ भी लेंगे तो ये मान कर चलिए कि उसमें मिलावट नाम का एलिमेंट सबसे प्रमुख इंग्रेडिएंट होगा। और जहां तक बात जांच की, तो वो करेगा कौन और कैसे, क्योंकि जिस राज में जांच होनी है उसके चाल चेहरे चरित्र सब में तो अब मिलावट का मुलम्मा चढ़ चुका है। और हाँ, जिस आंध्र प्रदेश में जो पाप हुआ उसका सबसे बड़ा भागीदार कौन है, क्या वो नहीं जिसने बारी बारी से कभी जगनमोहन तो अभी चंद्रबाबू को गले लगाया हुआ है। खैर, ये तय करना आपको है, इसीलिए अपन तो कहेंगे कॉलम में इस बार मेरे विचार का शीर्षक है मोदी राज का प्रसादम। छे, प्रसादम तो मैंने भी खाया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को कवर कर अयोध्या से जब श्रुति लौटी थी तो प्रसादम लेकर आई थी। न केवल मैंने, घर में सभी ने खाया, बल्कि पत्नी ने पड़ोस में भी बांटा। और अब शंकराचार्य और मंदिर के मुख्य पुजारी कह रहे हैं कि वे लड्डू तिरुपति देवस्थान से बनकर आए थे। इसका अर्थ तब मैंने और प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या आए सभी हिंदू भद्रजनों साधु संतों ने पशु चर्बी युक्त घी का प्रसाद खाया, और बतौर मुख्य यजमान मोदी ने उसी का भोग रामलला को लगाया। या उनके लिए चढ़ावा अलग था और भक्तों को मूल चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं बटा, बल्कि उसके झूठ में तिरुपति से आए लड्डू बांटे गए। क्या प्रधानमंत्री ने मुख्य यजमान के दायित्व में या राम मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय नृपेंद्र मिश्र आदि ने तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के घी का पहले टेस्ट करवाकर शुद्धता की कोई गारंटी ली थी? राम मंदिर ट्रस्ट ने पैसे देकर उन्हें खरीदा था या फ्री में तिरुपति रसोई में बने व चढ़े हुए लड्डू बांटे? क्या है रिकॉर्ड? क्या राम मंदिर में इतना पैसा नहीं था जो अयोध्या में राम जी की रसोई बना, तिरुपति से कारीगर बुलाकर राम जी के अपने प्रिय प्रसाद को शुद्धता से बनवाते और प्राण प्रतिष्ठा में कोई खोट नहीं होने देते? मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन भी क्या ट्रस्ट 100% शुद्ध एक ही प्रसाद बनाकर प्रभु को अर्पित नहीं करा सकता था, और क्या वही फिर सभी को समानता से नहीं बटना चाहिए था? सोचे, अंग्रेजों ने 1857 के भारत बिहार में लोगों की भावनाओं को आहत करने के लिए कारतूस में तब पशु चर्बी के तौर पर गौ चर्बी सुअर चर्बी का पाप कराया, नतीजतन सैनिक विद्रोह हुआ। उसके बाद 80 के दशक में जैन बंधुओं द्वारा वनस्पति घी में पशु चर्बी के उपयोग के बवाल की खबरें थी, और अब सीधे पशु चर्बी या गौ चर्बी की प्रसादम में मिलावट का एक ऐसा अकल्पनीय आघात है जिससे तिरुपति बालाजी और नवनिर्मित राम मंदिर के भोग और प्रसाद से हम हिंदुओं के सिर माथे का पाप ही पाप। तो यह नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ का राम राज्य है या घोर पापी कलयुग? यह न बात का बतंगड़ है और न नरेंद्र मोदी की लीडरशिप पर सवाल। मैंने खबर जानी तो जुगुप्सा हुई, लिखने का सवाल नहीं था। लेकिन फिर मोदी राज की एक और प्रसादम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सियासी टिप्पणी पढ़ने को मिली। उन्होंने वाराणसी में शनिवार यानी 22 सितंबर को कहा कि कल रात मेरे कुछ सहयोगी बाबा विश्वनाथ धाम गए थे, रात में मुझे बाबा का प्रसादम दिया तो मेरे मन में तिरुमला की घटना याद आई। मेरा मन थोड़ा खटका, हर तीर्थस्थल में ऐसी घटिया मिलावट हो सकती है, हिंदू धर्म के अनुसार ये बहुत बड़ा पाप है, इसकी ढंग से जाँच हो। कौन करेगा जांच? वे जिन्होंने अयोध्या में मिलावटी प्रसाद बंटवाया, वे जो 10 वर्षों से सब में सब कुछ मिला चुके हैं, सब कुछ भ्रष्ट और अपवित्र बना चुके हैं, मंदिर में राजनीति, राजनीति में मंदिर, राजकाज में मूर्खताओं, शिक्षा में अज्ञानता तथा सत्य में झूठ की, विश्वास में अंधविश्वास जैसी मिलावटों से बात बात में सनातन धर्म की शर्म जो बना बैठे हैं, वे क्या जांच करेंगे और उनकी जांच में कितनी मिलावट होगी? आज ही सुना कि 22 जनवरी 2025 को फिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है। क्या प्राण प्रतिष्ठा बार बार होती है? जाहिर है मोदी राज का 10 वर्षों का यह प्रसादम है जो 140 करोड़ लोगों का देश ऐसा बिहड़ बना जिसमें आस्था, धार्मिकता, लोकलाज, जन भावना का न्यूनतम ख्याल नहीं है। समझ नहीं आता इतने बेखौफ बेशर्म कैसे हो गए हैं सत्ता के अहंकारी। यदि हिंदुओं का नंबर एक समृद्धतम तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट भी पूर्ण शुद्ध भाव से अपने भगवान और भक्तों के लिए शुद्धतापूर्ण लड्डू का चढ़ावा नहीं चढ़ा सकता है, तो इस बिहड़ के लोगों को अपने को हिंदू सनातन धर्मी क्यों कहना चाहिए, जिस देवस्थान पर करोड़ों करोड़ों लोग बेइंतहा चढ़ावा चढ़ाते हैं, पैसा अर्पित करते हैं, जिसकी अरबों रुपये की कमाई है। क्या वहां के पुजारी, ट्रस्ट को संभालने वाले आईएएस अफसर, नौकरशाह और सत्ता की मेहरबानियों से बने भक्त ट्रस्टी इतना भी नहीं कर सकते जो वे देशी गाय का घी पूरी कीमत देकर खरीदते हैं? जिस मंदिर पर आस्थावान सब कुछ लुटाने को तैयार हैं, उसके कथित हिंदू प्रबंधकों ट्रस्टियों को क्यों यह सोचना चाहिए कि टेंडर से जो सस्ता घी देगा उसका घी खरीदेंगे, जबकि सर्वमान्य है कि 319 रुपये या 475 रुपये प्रति किलोग्राम की रेट से असली गाय की टनों घी की नियमित सप्लाई संभव नहीं है। मोटा अनुमान है कि देशी गाय का शुद्ध एक किलो घी 1,000-1,500 रुपये तक की लागत लिए होता है, पर इस कीमत पर भी घी खरीद कर लड्डुओं के चढ़ावे से तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर जहां आनंदित होंगे, वहीं भक्त भी शुद्धता की पवित्रता से उसे ऊंचे दामों पर खरीदने में हिचकेंगे नहीं। हालांकि प्रसाद बेचना नहीं चाहिए, वह फिर सौदा है, धर्म के साथ घात है। कहते हैं तिरुपति में रोजाना कोई 3 लाख लड्डू बनते हैं और इसका राजस्व कोई 500 करोड़ रुपए सालाना है। प्रतिदिन कोई 10,000 किलो घी की खपत है। सोचे यदि पिछले 5 सालों में प्रसादम के नाम पर चर्बी युक्त लड्डू बिके हैं, तो 5 वर्षों में देश दुनिया के आस्थावान हिंदुओं ने कोई 5,475 लाख लड्डू पूरी आस्था से खरीद उसे ग्रहण किया। पिछले 10 वर्षों में मोदी और भाजपा ने चुनावी जीतों के बाद लड्डू मंगवाकर जीत का जश्न मनाने या अयोध्या के कार्यक्रम में उपयोग के अलग रिकॉर्ड बनाए हैं, और सब में मिलावट इस हिसाब से तयशुदा थी क्योंकि 100% शुद्ध देशी घी की सप्लाई 319 रुपये प्रति किलो जैसी रेट पर होना नामुमकिन है। एक जानकार के अनुसार आमतौर पर गाय के 6 लाख लीटर दूध से 15 टन घी बनता है। पहली बात, इतनी सप्लाई के लिए किसी एक कंपनी के पास इतने बड़े पैमाने पर गाय का दूध इकट्ठा करने का सिस्टम नहीं है। बावजूद इसके कम रेट पर भी कंपनी और तिरुपति देवस्थान बिक्री खरीद के सौदे में शुद्ध घी का धोखा बनाए हुए है। इस तथ्य पर भी गौर करें कि कर्नाटक की एक सप्लायर नंदिनी कंपनी, जिसके पास गाय है, वह 475 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सप्लाई कर रही है। वहीं दूसरी कंपनी से देवस्थान 319 रुपये प्रति किलो घी खरीद रहा है, तो वह कैसे सस्ता बेच दे रहा। दरअसल तिरुपति के लड्डुओं के लिए घी की जितनी सप्लाई चाहिए उसके लिए इलाके में इतनी गायें हैं ही नहीं, मगर मंदिर का प्रबंधक डिमांड, सप्लाई और कमाई के धंधे में डूबा हुआ है, तो अंधाधुंध खरीदो और बेचो। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक को छोड़कर किसी भी राज्य के पास इतनी संख्या में गाय नहीं है। दूरी की वजह से पंजाब से घी मंगाना मुश्किल है। निजी कंपनियां विदेश से मंगाए गए बटर ऑयल की मिलावट करती है। असल में टीटीडी का टेंडर पाने के लिए 2.5 लाख लीटर दूध को प्रोसेस करने की क्षमता होनी चाहिए, इसीलिए दूध बनता है बटर ऑयल और पाम ऑयल की मिलावट से। पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने सीधे एनिमल फैट यानी पशु चर्बी के घी की बात कही है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी की कार्यकारी अधिकारी श्यामला राव, जिन्हें चंद्रबाबू नायडू द्वारा ही नियुक्त किया गया है, इसकी पुष्टि की है। गुजरात की नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की काफ लैब यानी सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइव स्टॉक एंड फूड से सैंपल की जांच कराई गई। उसकी लैब रिपोर्ट में एस वैल्यू के आधार पर नमूने सभी 5 पैमानों पर असफल थे, इसलिए घी में वनस्पति तेल और जानवरों की चर्बी दोनों की मिलावट है। एक और शर्मनाक बात, अरबों रुपये की संपन्नता वाले तिरुपति देवस्थान ने जरूरत नहीं समझी कि वह इतना घी खरीद रही है, तो 75 लाख रुपये लागत से बनी एक लैब ही अपने यहां बना ले और नियमित जांच होती रहे, इससे भी क्या साबित होता है। बिहार के हिंदुओं को कुछ भी बेचो, वे सिर झुकाकर खा लेंगे, भले पशु चर्बी क्यों ना हो, गौ चर्बी क्यों ना हो। और बेचारे हिंदुओं की सबसे बड़ी त्रासदी है कि पशु चर्बी युक्त प्रसादम उस मोदी राज के समय में खुद उनके हाथों से है। एक तरफ गौवध के खिलाफ राजनीति है, तो दूसरी ओर अब घर घर की यह ग्लानी है कि उन्होंने पशु चर्बी प्रसादम अपने भगवान को खिलाया और खुद खाया। यह कैसा घिनौना छल है हिंदू राजनीति की दुकानदारी की आड़ में। सोचे सनातन धर्म का कैसा कुंडा है हिंदू राजनीति के नाम पर, सब कुछ ठगी, व्यवसायी और खरीद बिक्री के रूप में हो गया है। मंदिर व्यवसायी हो गए, दर्शन प्रसाद बिकाऊ है, पूजा पाठ बिकाऊ है, प्रवचन बिकाऊ है और सिर्फ दिखावा ही आस्था, धार्मिकता, आध्यात्मिकता। हाँ, आचरण पशु चर्बी में प्रसादम से अधिक घिन भरा है। सनातन धर्म के सभी विकल्पों में पहले आचार विचार, सत्य सदाचार, सादगी, शांति, स्वच्छता, शुद्धता का जितना मान, पवित्रताएं थी, वे सब अब खत्म हैं। उसकी जगह वह प्रसादम है जिस पर जितना लिखा जाए वह कम होगा। प्रसादम पर्याय है पिछले 10 वर्षों के अमृतकाल का। आखिर में हर पाठक को यह भी जान लेना चाहिए कि जिस मुख्यमंत्री जगनमोहन पर चंद्रबाबू नायडू ने प्रसादम में मिलावट का ठीकरा फोड़ा है, उसके भ्रष्टाचार को मोदी सरकार का संरक्षण था। जगनमोहन के खिलाफ डॉक्टर मनमोहन सरकार के समय भ्रष्टाचार के आरोप थे, ईडी सीबीआई की जांच करवाई थी, उन सब पर मोदी सरकार ने सत्ता में आते ही रोक लगाई। तभी चंद्रबाबू नायडू को हराकर जगनमोहन की आंध्र प्रदेश में सरकार बनी तो वह भाजपा के साथ थी, राज्यसभा में, संसद में वह मोदी सरकार की पैरोकार थी। इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने अपनी खुन्नस में जगनमोहन रेड्डी सरकार को चर्बी युक्त प्रसादम का भ्रष्टाचारी करार दिया है, तो यह उनका एक आपसी पारिवारिक बदला भी है। यह भी सही है कि रेड्डी परिवार ईसाई है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू ने हिंदू कार्ड चला, मगर दोनों के मालिक तो एक अकेले नरेंद्र मोदी थे और हैं। आंध्र के नेता तो महज दिल्ली के पावर के सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। बहरहाल, हे मेरे प्रभु भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें बचपन में मैंने बालाजी के रूप में धारा हुआ था, और प्रभु श्री राम, जिनके काज को लेकर मैंने जनसत्ता में बेखौफ कलम चलाई थी, मुझे क्षमा करें जो आपको मन में धारे हुए आपको अर्पित मान मैंने आपके नाम पर गौ चर्बीयुक्त लड्डू खाया। पॉडकास्ट का ये एपिसोड अब यहीं खत्म होता है। अगले एपिसोड का करें इंतजार। बहुत बहुत धन्यवाद।